लोग एक एक स्थान पर 108 बार प्रणाम करके आगे बढ़ते हुए कितने वर्षों में परिक्रमा करते हैं, इसलिए वो धन संपत्ति आदि दुर्भागा है। कृष्ण के चरण में प्रेमा भक्ति गोपियों जैसी भक्ति नहीं मांगती, इसलिए वो दुर्भागा है। गिरिराज जी गुरु वृंदावन में एक बार कृष्ण ने कहा था राधा जी से, मैं कुलोक में जाना चाहता हूं और आपको भी हमारे साथ में चलना है। उन्होंने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, जमुना नदी साथ जाए, गिरिराज गोवर्धन हो और सब जितने ब्रज की चीजें हैं वो सभी लोग जाएं, पहले वहां पर अवतार लें तब हम जाए। इसलिए गिरिराज जी साधारण नहीं है, लोग वृंदावन है, तो इनके संबंध में अभी विभिन्न वक्ता को वर्णन करेंगे, आप लोग श्रवण करें।
Shri Guru and Gauranga, we had a chance to stay more than 14 days in Vrindavan. In those 40 days, we went to many, many pastime forests of Krishna. And now, by the grace of Vrindavan and Krishna, we have come here to Krishna's dear most, who fulfills all one's desires, Sri Giriraj Maharaj. And we will stay approximately 16 days here. We will visit all the main forests around here, like Chandpia, like Yavat, Shurikun, Baitak, many, many places. But no one should take a Govindan Shila from here. To do so will destroy one's bhajan. If one desires a Govindan Shila, one should replace that Govindan Shila with an equal weight of gold, after taking permission from the spiritual master, the Vaishnavas of the Vrindavasi. And no one should walk upon the Giriraj, climb upon him. We should be careful that here we have no material desires. Many millions and millions of people come here to perform parikrama for the fulfillment of their desires, especially on the days from Ekadasi to Purnima, the full moon. There is not even room for standing here. And all are wanting something. They have desire for marriage, or my daughter should be married, or I should possess a new house, I should get a job. Some people even in one place perform 108 parikramas in one place, dandavats in one place. And for many years they perform this austerity. Why? Simply for fulfillment of some material desires. But they are most unfortunate because they achieve it from the service of Sri Radha and Krishna. Devotee's Govardhan is always situated in Golok Vrindavan. So when Krishna said to Radhika, I will descend the world, I will go to Gokul. Then Srimati Radhika said, Krishna said, you should come with me. Srimati Radhika said, no. I will not go anywhere without Vipuna, without Giriraj, without the forest of Rajamandal. They should appear first in this world, then I will also go. So Giriraj is not ordinary. He is always situated in the spiritual world.
Yeah, I'm someone to look after so they person to go to the road and see the other person. तदनंतर उपस्थित पूजनीय सन्यासी वृंद वैष्णव महाकाम सज्जन तथा बहन और सभी को मेरा प्रणाम निवेदन। हम लोग मथुरा से चलते हुए मथुरा की परिक्रमा के पश्चात वृंदावन में आए और वृंदावन से हम लोग ब्रज गोकुल की यात्रा की और गोकुल से वृंदावन होते हुए मानवन भंडीवन भद्रवन बहुलावन और उधर में जो कि मधुवन तालवन कुमुदवन बहुलावन महावन लौहवन मानवन बेलवन भाग्यवन भद्रवन इन सभी वनों में हम लोग गए। जबकि वहां की लीला कथाओं को श्रवण किया तो उसके पश्चात आज गुरु गोविंद की अपार करुणा से हम लोग गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में से गिरधारी गौरी मठ में हम लोग उपस्थित किए। जबकि श्री रघुनाथ दास जो स्वामी बात कहते हैं वैकुंठाद यशोधरा वैकुंठाद वैकुंठाद जनो बरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवा वृंदारण्य मुदार पाणी रमनाथ तत्रापि गोवर्धन राधा कुंड में हापि गोकुल पदे प्रेमामृत प्लावना कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवा विवेकी नक्त बोले कि वैकुंठा जरितो बरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवा वैकुंठपुरी अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ ये मधुपुरी जहाँ पर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और वहाँ पर देवकी वसुदेव के अंदर ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों प्रकार के भाव विद्यमान थी और उस ऐश्वर्य भाव के बीच में भी माधुर्य भाव के कारण भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर प्रकट अपनी प्रकट लीला की और ब्रज गोकुल में वहाँ उन्होंने जन्म लिया। वह जहाँ ब्रज गोकुल जो कि केवल माधुर्य की भूमि वास्तव प्रेम रस का समुद्र उस माधुर्य की भूमि में भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल घूम करके लीलाएं की इसलिए वास्तव रस की लीला भूमि हुई ब्रज गोकुल। और वहां से चलते हुए जबकि आगे वृंदावन में आए तो ब्रजवासियों ने छठी करा में निवास किया और निवास करते हुए कृष्ण बलराम दोनों वत्स पालक बने और जल की वन वन में गोचरण निमित्त गए वन विहार करने लगे। वृंदावन आदि में लीलाएं हुई साढ़े तीन वर्ष से लेकर के चार वर्ष पांचवे वर्ष में उन्होंने ब्रह्मोमोहन लीलाएं की बृहद वन वृंदावन में और जहाँ की ब्रह्मोहन लीला के द्वारा सभी वत्सल रसपति माताओं के और गौओं के वत्सल भाव का उन्होंने आस्वादन किया। छठवें वर्ष में गोपियों का चिरहरण करते हुए उनके मनोरथ पूर्ण करने का संकल्प दिया वचन दिया। सातवें वर्ष में उन्होंने गिरिराज गोवर्धन का धारण किया और आठवें वर्ष में उन्होंने वृंदावन में रास रचाई जो कि सारंगी रास का वर्णन हुआ है और वही आठवें वर्ष में काली दमन लीला हुई है वृंदावन में। ऐसे ऐसे और जितनी भी लीलाएं हैं वन विहार इत्यादि में इस प्रकार भगवान कृष्ण ने सखाओं के साथ में पौगंड रस का आस्वादन किया। उसके पश्चात पौगंड के पश्चात आता है कैशोर जहाँ पर नव कैशोर की लीलाएं हैं और मधु कैशोर लीला वृंदावन में प्रकाश होते हुए फिर वृंदावन से चल करके गोवर्धन में आया। इसलिए हमारे गोस्वामी पादों ने कहा कि वृंदावन से भी बढ़ करके रघुनाथ तत्रापि गोवर्धन जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने रमन किया आनंद विहार किया कैशोरे कलयन सफल करती कुंजे कलयन हरि जहाँ पर गोवर्धन की कंद्रा कंद्राओं में और कुंज कुंज में ब्रज गोपियों के साथ में लीला विनोद करते हुए उन्होंने कैशोर सफल किया और साथ ही साथ प्रेम अनुराग मय होकर के और भी बढ़ता चला गया। जहाँ प्रेमतियों का प्रेम स्नेह मान प्रण राग अनुराग वहां हम की स्थिति को प्राप्त करते हुए वो और भी चमत्कार पूर्ण हुआ। श्री कबीराजी गोस्वामी बाप ने कहा कि राधा और कृष्ण का परस्पर प्रणय, ये जो प्रणय हवा का सुगंधित उद्वर्धन, एक दूसरों के प्रति प्रेम प्रीति विलास और स्नेह संबंध, ये सुगंधित उद्वर्धन हवाडा के जैसे ही चारों ओर फैल गया है। सभी ब्रजवासी जानिए कि कृष्ण राधा को प्यार करते हैं और राधा कृष्ण को प्यार करती है, परंतु यह विलास के रूप में बढ़ता हुआ और भी प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंच गया। जहाँ पर लासो रवा ना हम रवनी, यह भाव लेकर हुए एक दूसरों में आनंद और प्रेम की पराकाष्ठा पर आए। इसलिए ये गिरिराज गोवर्धन जो कि रमणा तत्रापि गोवर्धनम, जहाँ पर प्रमुद मदन लीला कंदरे कंदरे थे रजयति नवजूरो दंदमस्मीन मंगलम, जहाँ राधा कृष्ण के प्रमद मदन विजयी लीला कंदरा कंदराओं में आज जैसे हम लोग गए तो बैठा चंद्र सरोवर आदि स्थानों में जहाँ पर शांति राज भी बने करके बासंती राज की चमत्कारिता दिखलाई और उसमें राधा जी के प्रेम की पराकाष्ठा उनकी महिमा को सर्वोत्तम रूप से घोषित कर दिया। ऐसे जो गिरिराज गोवर्धन जी, ये गिरिराज गोवर्धन अभी गुरु जी ने बताया और आदेश दिया, ये गिरिराज गोवर्धन आए कहां से? हम लोग सुनते आए हैं वैष्णवों से कि ये द्रोणाचल का पुत्र है। जैसे भौतिक जगत में लीलाओं में कहीं किसी का जन्म होता है कोई किसी रूप में आते हैं, तो ऐसे नित्य सिद्ध परिकरों का आना हुआ। तो ये गिरिराज गोवर्धन तो ये राधा जी का हृदय स्वरूप जहाँ मन से प्रकट हुआ है और ऐसे ऐसे वर्णना होती है और नित्य धाम में नित्य ही विराजमान है, परंतु जब प्रकट रूप में देखा जाता है तो ये द्रोणाचल के पुत्र होकर के आए। और जबकि हिमालय द्रोण पर्वत और उसमें द्रोण पर्वत के पुत्र रूप में गिरिराज गोवर्धन की बड़ी प्रसिद्धि रही। तो काशी के ऋषि कुलस्थ, काशी के रहने वाले कुलस्थ ऋषि रूपेगाम से हुए जो पल से जबकि हिमालय पर पहुंचे थे द्रोण पर्वत के, वहां पर पहुंचने से उन्होंने उनका आदर सत्कार किया अभिनंदन किया। इसके पश्चात जब वे लौटने की तैयारी में तब बोले कि यहाँ तो आपके बहुत से पर्वत मालाएं हैं, हमारे काशी में वहां कोई पर्वत नहीं है, हमें एक पर्वत माला चाहिए जिससे कि हमारे आश्रम की शोभा बढ़ जाए और बड़ी हरियाली और सुंदर सुहावना लगे लगे, हमें एक पर्वत चाहिए। उस समय पहले युग में क्या होता था, सभी पर्वत आकाश में उड़ते थे, उनके पंख हुआ करता था और ये सभी पर्वत घूमते फिरते थे, परंतु पीछे से जा करके देवराज इंद्र ने जबकि पर्वतों के पंख काट दिए वज्र के प्रहार से, जो जहाँ थे वही रह गए, अब कोई इधर उधर नहीं जाते। तो ऐसे सभी सुना जाता है। तो द्रोण पर्वत का पुत्र गिरिराज गोवर्धन देखने में बड़ा सुंदर सुहावना और हरियाली से युक्त, यह देखकर के कुलस्थ ऋषि को बड़ी इच्छा और लोभ हुआ। तो उस समय कुलस्थ ऋषि जी ने उनसे प्रार्थना की, उन्होंने कहा यह मैं क्या कर सकता हूँ, यह आप ही पूछिए उनसे, गिरिराज यदि जाना चाहे भी जा सकते हैं, आपके आश्रम की शोभा बढ़ाए, हमें कोई मना नहीं है। तो कुलस्थ जी ने गिरिराज से पूछा, कहा कि हमारे आश्रम की शोभा बढ़ाने के लिए तुम्हें चलना होगा? वे बोले मैं जा सकता हूँ एक शर्त पर, एक तो मुझे ले जाना पड़ेगा, दूसरी बात मुझको जहाँ कहीं रख देंगे वहीं से मैं एक तिल भर नहीं हटूंगा, पहले ही आऊंगा। तो बोले कि अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, मैं ऐसे ही करूंगा, अपवित्र अवस्था में छू भी नहीं सकते। तो ये सारी बातें थी, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं है। जबकि उन्होंने तैयार कर ली, सारी तैयारी करके जब पर्वत को उन्होंने हथेली पर उठा लिया, जो बहुत से आकाश मार्ग से आ रहे थे, आगे आगे रास्ते में जबकि ब्रजभूमि के ऊपर गिरिराज गोवर्धन जी आ रहे, उस समय उनके पूर्व स्मृति सारी जाग उठी। अरे ये भगवान कृष्ण की लीलाएं होंगी, बहुत शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे, अभी लीलाएं करेंगे, मैं उनकी लीला भूमि छोड़ करके नहीं जाऊंगा, प्रभु आप हमारी रक्षा करें, आपके स्थान छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इतने में अचानक कई वक्तव्य से उनको भारी जनसंख्या लग गई, तो उस समय जब भी जनसंख्या लगी तो आप क्या करें, रोमन जी पुरस्कार जी आप आकाश मार्ग से नीचे उतर आए, आकर के धरती पर गिरिराज को रख दी, रख करके जनसंख्या के लिए चले। कुछ देर बाद जब जनसंख्या करके उसके आए, इतना दिन धोया धो करके फिर आए, गिरिराज जी को उठाना चाह तो उठे ही नहीं। जब पिताजी उठने बोले, अरे गिरिराज तू क्यों नहीं उठता है, क्यों नहीं जाता है जब? बोले मैंने तो वचन दिया आपको कि आप एक बार जहां कहीं रख देंगे मैं वहां से तीन बार नहीं हटूंगा। क्या तुम नहीं चलेगा? बोले नहीं जा सकता, जो आप अपने वचन को पूरा कीजिए, आपने रख दिए तो रख दिया। बोले मुझे अनुसंता लग गई तो क्या हो सकता है उसमें? बोले कोई बात सुनवाई नहीं होगी। ऋषि और बिगड़ गए, बिगड़ करके बोले कि जा तीन बार में यदि तुम बैठ जाएगा प्रतिभा तुम बैठ जाएगा। बोले कि वो मंजूर है, फिर भी मैं नहीं जाऊंगा। जब वे नहीं गए तो बोले तिल तिल का अभिशाप उन्होंने ग्रहण कर लिया, परंतु ब्रजभूमि छोड़कर जाने का उन्होंने चिंतित मात्र मन नहीं बनाया। उस समय पुलस्त ऋषि तो चले गए, परंतु गिरिराज जी सदा के लिए यहाँ विराजमान रहे, भले ही कालक्रम से तिल तिल करके बैठते जा रहे हैं या बैठ भी रहे हैं, फिर भी कृष्ण के स्मरण में वे निरंतर डूबे रहे। जहाँ पर भगवान कृष्ण ने लीलाएं की और गिरिराज जी की महिमा बढ़ाने के लिए उन्होंने देवराज इंद्र के दर पर चूर्ण करने के लिए गिरिराज गोवर्धन जी को उन्होंने पूजा भी की, उनकी महिमा बढ़ाई, और साथ ही गिरिराज जी को बाया की कनिष्ठ अंगुली पर उठा दिया, और साथ ही तक अपने अंगुली पर धारण करते हुए उनकी महिमा की घोषणा कर दी। और इसके पश्चात सभी घटनाएं सबको पता है, जबकि गिरिराज इंद्र आकर के क्षमा मांगने लगे, गोविंद नाम से अगस्त गंगा के पानी से उन्होंने अभिषेक भी किया। गोविंद गोत्री सुरार्ती हर अवतार, जो ब्राह्मणों के गायों के भक्तजनों के ब्रजजनों की रक्षा करने वाले जो गोविंद है, और ऐसे जो अवतीर्ण हुए हे गोविंद आप हमारी रक्षा करें, हमें क्षमा कर। इस तरह से उन्होंने प्रार्थना की। ऐसे ये गिरिराज जी है जहाँ भगवान कृष्ण के द्वारा परमोल पर उत्तीर्ण होने से उठे हुए होने से देवराज इंद्र के बच्चे के प्रहारों को हजारों प्रहारों को फूलों के समान गिनती में उड़ा दी, चाहे बच्चे से भले ही टुकड़े टुकड़े बन जाए। वहां से लोग प्रश्न करते हैं, सभी पत्थर को पूरा के पूरा दिखता है, गिरिराज जी बहुत टुकड़े टुकड़े दिखते हैं। बोले देवराज इंद्र के प्रहार से भले ही टुकड़े बन जाए, फिर भी गिरिराज जी कृष्ण जी कर कमल पर विराजमान होने से वे इस प्रकार आनंद में डूबे हुए, उनके आनंद के एक कण को भी बिगाड़ नहीं सका। इस प्रकार जो कृष्ण आनंद में सदा सर्वदा डूबे हुए, जो स्वयं गिरिराज जी कृष्ण की राधा माधव की सेवा करने के लिए निरंतर प्रस्तुत थे, आज भी ब्रज भर के प्रसिद्ध जागृत देवता के रूप में जो विराजमान, ऐसे गिरिराज जी की आज तलहटी में हम सभी लोग आए हैं, उनके शरण में उनके चरणों में हम नित्य नमन करते हैं, और उनकी कृपा की भिक्षा करते हुए आज हम की वंदना करते हैं। वंशा
appeared here and performed all his pastimes in this area.
And at the same time, in the Garga Samhita, there is another story which is related, because of different kalpas, different pastimes of the Lord take place. So, also, there is one great rishi, Pulastya Rishi. And Pulastya Rishi used to perform his meditations and all of his tapasyas in Kashi. And when he was visiting Dronacharya, there he saw the son of Dronacharya, which is Govardhan, and he saw how beautiful, how sweet was the atmosphere when he was there on Giriraj Govardhan. And there were such beautiful waterfalls, and it was a very inspiring atmosphere with the fragrance of flowers, beautiful forests everywhere. So he requested to Dronacharya that, please allow your son to come and be at my ashram so that I can perform my meditations. So Dronacharya agreed, but he was also somewhat frightened that the great Pulastya Rishi, very powerful mystic Rishi, would curse him. So he agreed. And Giriraj Govardhan himself also agreed, but on one condition, that as he is carrying him through the air, if he puts him down in any place for any reason, then he will stay there. So, Pulastya Rishi very happily accepted this condition, and he began to lift Giriraj Govardhan on his hand with his mystic powers, and he began to fly through the air. Now when he came here, to this area of Rajamandala, Giriraj Govardhan, he understood that this was his place to stay. And Giriraj became very, very heavy, so that the Rishi was not even able to hold him up any longer. And finally the Rishi came down and placed Giriraj down on the earth here in this place. And then the Rishi went to take his bath and perform his anik, chanting his mantras. And then when he came, he returned. Now he again requested Giriraj to come upon his hand. But at that time, Giriraj Govardhan reminded him that he had already made a promise and agreed that he would not be lifted up again after he was put down. And when he told this to the Rishi became very upset, and the Rishi cursed Giriraj. Oh, all right. Then you will stay here, but you will constantly be shrinking and shrinking and shrinking. Every single year, the size of one mustard seed, you will shrink down. So, Giriraj Govardhan was very happy that now he would be in the land of Krishna's pastimes. So Giriraj happily stayed there and Pulastya Rishi left. So actually Giriraj Govardhan, we can see now, after 5,000 years plus, Giriraj Govardhan has shrunken down. But Srila Gurudev is telling us in his Rajamandala Parikrama book that who can actually say whether it is because of this curse of the Rishi or whether it actually is because Giriraj Govardhan, he is feeling great separation from Sri Krishna after he performed his transcendental pastimes here in Rajamandala. So, Srila Rupa Goswami in Sri Upadeshamrita, he explains to all the sadhakas that if you want to perform this bhajan to attain the service of Radha and Krishna in Braja, then you should live in Braja. You should be residing in the land of Braja Vrindavan. And there, under the guidance of pure Vaishnavas, you should perform your transcendental Harinam Seva bhajan. So, in the next verse after that, then Srila Rupa Goswami is explaining where is the best place to perform in all of Rajamandala. And there he gives a comparative analysis. He says, Vaikuntha Shrinito Varahmanupuri Tatrapi Ratsu Sabat Vrindaranya Mugara Pani Ramana Tatrapi Govardhana Radhakunda Vihapi Govula Pate Premam Rita Plavana Here he says, in comparison with the transcendental spiritual world of Vaikuntha Lokas, the transcendental land of Mathura, Madhupuri, it is far superior to that because Sri Krishna took his birth there. According to Srimad Bhagavatam, he was born there. There, and In comparison with Madhupuri, then the land of Vrindaranyam, the transcendental forest of Vrindavan, is superior because Tatrapi Rasa Utsava, the great Utsav, the festival of Rasleela, the Mahalila, took place there on the banks of the Jamuna River at Kamshivat. But superior to that place is Govardhan. Why? Because it was held on the hand of Sri Krishna for 7 days and 7 nights. This pastime took place here, and also in the land of Giriraj Govardhan, being part of Giriraj Govardhan. The two kundas, Shyama Kunda and Radha Kunda, are situated there, and between them Radha Kunda is radiant, supremely glorious amongst any other places, and that is situated in Govardhan. Actually, it is compared, the Shyama Kunda and Radha Kunda are compared to the two eyes of a peacock, because Giriraj Govardhan, his shape is also like a peacock, and sometimes also compared to like a cow. How the cow takes its head, within its belly, like that. So the two eyes of the peacock is Giriraj Govardhan. Srila Raghunath Das Goswami also compares Shyama Kunda and Radha Kunda and Giriraj Govardhan to the fresh tilak on the face of all of Braj Mandala, which is decorating Braj Mandala. So in this place is so glorious, our acharyas have glorified Giriraj Govardhan to show us that here, amongst all the pastimes of Radha and Krishna's Leela, especially in their Basanti Ras Leela, which was performed here in Giriraj Govardhan, in the forest surrounding Govardhan, that Leela is the topmost supreme Leela. And there, Sri Krishna tasted the topmost ras in the association of Srimati Radhika and the Braja Gopis. So the glories of Giriraj Govardhan will be understood day by day as our beloved Gurudev leads our parikrama and our harikatha and shows us that we have become so fortunate to come here under his guidance in his association and to worship Giriraj Govardhan.
হনুমান বলেছিলেন এইটা বলতে পারো আরো হনুমান এনেছিলেন অন্যান্য যা শাস্ত্র আছে ওম জ্ঞান নিরাম গৌরচন্দ্রায় রাধিকায় সদালয় কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় তদ্ভক্তায় নমো নমঃ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে সর্বপ্রথম শ্রী গুরুদেব শ্রীলা বিষ্ণুপাদ
উপস্থিত परम सौभाग्य गुरु जी का अनुग्रह में हम लोग श्री गिरिराज गोवर्धन में उपस्थित हुए हैं। गिरिराज आज महाराज जी का जो महिमा संपूर्ण पृथ्वी में ही उनका सौरव उनका सौष्ठव उनका सौगंध उनका महिमा जो संपूर्ण विश्व में प्रकाश हो रहा है, ये श्री गिरिराज महाराज का ही कृपा है। क्योंकि ऐसे महाराज ने इसी गिरिराज गोवर्धन जहाँ पर हम लोग अभी भगवत कथन श्रवण कर रहे हैं, गिरिराज गुरु जी यहीं पर भी श्री गिरिराज की बड़े कठोर रूप में यहीं पर रह कर किसी तरह से थोड़ी माधुरी लेकर बड़े कठोर साधन में जा रहे हैं। गिरिराज की महिमा गिरिराज की कृपा के द्वारा भी आज गुरु जी इतने सारे महिमा है, इसलिए हमारे संप्रदाय में गिरिराज की बड़ी महिमा है। गिरिराज की महिमा के बगैर कोई राधा कृष्ण के चरण की प्रेम पर राधा कृष्ण की प्रेम सेवा को कोई प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए स्वयं उद्धव जैसे व्यक्ति होते हुए भी हाँ वे ब्रज में आकर के जब ब्रज गोपियों की सर्वोत्तम दर्शन किया, उन्होंने सोचा कहाँ पर मेरी अभिष्ट पूर्ति हो सकती है, तब उन्होंने देखा गिरिराज की कृपा के बगैर हमारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। इसलिए गिरिराज भी आ करके उद्धव भी आ करके श्री गिरिराज चरण जी में ही उद्धव कुंड पर एक हाथ कर करके उन्होंने बदल दिया। नारद जी जब वे परमात्मा से शंकर जी से अष्टकाय लीला गोपी प्रेम सर्वोत्तम का प्रसंग है, उन्होंने आगे के कहां पर जाकर बदल दिया, श्री गिरिराज पहले भी श्री नारद कुंड पर ही उन्होंने जाकर बदल दिया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे अपनी वो जाति में जी पते हुए कि उन्होंने प्रार्थना किया गया निज अंतर निवास देवी गोवर्धन को सत्ता हे गिरिराज गोवर्धन आप कृपा करके आपका श्री चरण में ही तरह की बैठी हमें आश्चर्य थी। सनातन गोस्वामी सखद लवन में देख होते हुए भी प्रत्यह आकर के श्री गिरिराज गोवर्धन की प्रत्यह आकर के परिक्रमा करके यहाँ से पैदल मथुरा से वृंदावन जाया करते थे। और विश्वनाथ कविराज गोस्वामी विश्वनाथ कवि ठाकुर और जितने जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी जितने सारे गोस्वामी हो गए सब के सब गिरिराज चरण में आकर के उन लोगों ने भजन किया, क्योंकि इनका नाम गोवर्धन है, गिरिराज गोवर्धन है। गिरिराज गोवर्धन क्या महिमा है, अभी महाराज श्रवण कर रहे थे कैसे स्वयं कृष्ण जब सुगत वृंदावन से ये विश्व मध्य जगत में पधारने के लिए श्री राधा रानी को बोले हे राधे मैं ये मध्य जगत में जाना चाहता हूँ इसलिए मेरे साथ में तुझे जाना पड़ेगा। राधा रानी बोली मैं बेच जाने वाले नहीं हूँ, अगर जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन नहीं जहाँ पर यमुना नदी नहीं जहाँ पर श्याम कुंड राधा कुंड नहीं जहाँ पर द्वादश वन नहीं जहाँ पर नंदगांव दशहरा नहीं मैं वहाँ नहीं चलती हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा हे राधे मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा, जाते समय पूरा ये गोलोक वृंदावन में जो पूछो उन सबके सब ही मैं उतार दूंगा, इसलिए इस जगत में जो भी देखते हैं ये सब के सब सखाद गोलोक का विभुज जैसी संपूर्ण रूप में इस जगत में उतर आया है। इसलिए गिरिराज गोवर्धन जैसे कि साधारण रूप में सुनने के लिए लगता है सुना नल का पुत्र है रामचंद्र सेतु बना रहे थे, इसलिए गिरिराज गोवर्धन वृंदावन से ही इसी जगत में आए हुए हैं। इसलिए किसी समय राधा कृष्ण बिहार व्यक्त करते वो सोच रहे हैं हम लीला करने के लिए मध्य जगत में जाएंगे, ऐसे एक लीला स्थली होनी चाहिए जो कि हमारे लीला की उपकरण के सारे वस्तु हो, जहाँ पर सुंदर सुंदर भंजो हो, जहाँ पर जितने तरह का पुष्प हो वहाँ पर मिले, जितने तरह का फल वहाँ पर मिले, जितने तरह का झरना जितने तरह का एक साथ से ऋषि एक साथ बहे, जहाँ पर सृष्टि का सर्वोत्तम लीला की कोई स्थली होनी चाहिए। उसी समय स्वयं राधा रानी अपना हृदय से ही ये गिरिराज गोवर्धन को कृष्ण अपना सर्वोत्तम लीला स्थल रूप में अपना हृदय से ही गिरिराज गोवर्धन को स्वयं ईश्वर जी हृदय से प्रकट कर दिए, इसलिए राधा ने मन सजा दो ये राधा रानी के मन से ये गिरिराज गोवर्धन प्रकट हुए, इसलिए इनका नाम गिरिराज है। कहते गिरी होने से सर्वश्रेष्ठ है, तो एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ने भगवान राधा कृष्ण की कठोर तपस्या की, जब हनुमान संतुष्ट हुए तभी क्या चाहते हो?
तो बोले
हम आपकी चरण की हम सेवा चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने श्रवण किया ब्रह्मा स्वयं जब कृष्ण का गोवर ग्रहण करने के बाद उन्होंने जब पता चला कि कृष्ण ने सखा गोवा तो उन्होंने क्या प्रार्थना किया? इसलिए गोकुल का बाहर जहाँ पर साधारण लोग रहते उनका चरण की धूल पाने के लिए प्रार्थना किया, इसलिए स्वयं ब्रह्मा जो यहाँ पर वर्षा रूप में प्रकट हुए। अब स्वयं संकर जी वो भी भगवान का रास दर्शन करने के लिए वो भी स्वयं गोपी बन करके आए, इसलिए उन्होंने कृष्ण सेवा के लिए उन्होंने पर्वत रूप में श्री नंदीश्वर पर्वत नंददाम रूप में प्रकट हुए। स्वयं भगवान विष्णु भगवत सेवा प्राप्त करने के लिए विष्णु स्वयं के विराट गोवर्धन रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए स्वयं के जगत का सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को तीनों भगवत सेवा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पर्वत रूप से प्रकट हुए। राधा कृष्ण की चरण की स्पर्शा और उनका दर्शन उनको सेवा मिले, इसलिए गिरिराज का जो एक स्वरूप कभी साक्षात भगवान विष्णु और दूसरे स्वरूप में कभी श्री गिरिराज गोवर्धन की साक्षात भगवान कृष्ण ने, इसलिए चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को जब वो ब्रज में भेज रहे थे उसी समय उन्होंने दो चीज दिया, एक तो उन्हें गिरिराज सिला दिया, बोले रघुनाथ ये गिरिराज गोवर्धन ये गिरिराज सिला ये साक्षात कृष्ण और ये जो गुंजा वाला कभी साक्षात राधा है, इसे चैतन्य महाप्रभु का सिद्ध वाणी के द्वारा कभी गिरिराज गोवर्धन को कभी साक्षात भगवान कृष्ण है, एक स्वरूप श्री साक्षात कृष्ण स्वरूप है और दूसरे स्वरूप ब्रज गोपिया राधा ही क्या बोलती है कि धन पाया अद्भुत अबला हरिदास वैज्य इनको राधा ने स्वयं इनको हरिदास वैज्य बोल करके बताए, इसलिए महाराज बता रहे थे हरिदास तीन है, एक हरिदास तो हुए युधिष्ठिर महाराज, दूसरे हरिदास हुए हमारे उद्धव जी और ये हरिदास हुए हमारे युधिष्ठिर महाराज, हरिदास द्वार हुए उद्धव जी और हरिदास वैद्य बन हुए श्री गिरिराज गोवर्धन, ये हरिदास वैद्य है क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को जो रस है वहां तक वहां उनका जो रस केवल सत्य और वात्सल्य को ही गौरव सत्य वात्सल्य खोजती है और उनको ऊपर में उद्धव जी को कृष्ण स्वयं ब्रज भेजे जो कृष्ण का सखा और उन्होंने श्रृंगार रस की थोड़ी सी उनको केवल गंध कर केवल उनका महिमा को समझे, लेकिन कभी गिरिराज गोवर्धन है कभी हरिदास गंधे है कभी क्यों कभी इनकी कृष्ण लीला में महाराज कभी बताए ये हरिदासी भी है कभी क्यों कृष्णा कि मधुर मधुर जब विवाह करते थे उसी समय भगवान का चरण स्पर्श राधा कृष्ण की दिव्य लीला की दर्शन प्राप्त करके मानो श्री गिरिराज गोवर्धन स्तंभ जैसे पत्थर जैसे गिरिराज गोवर्धन करेंगे। क्यों? उनको लीला ही के स्तंभ है। इसे बहुत सारे कारण से श्री गिरिराज गोवर्धन यहाँ स्तंभ रूप में पत्थर रूप में हुए हैं। इसे इनका नाम गिरिराज, इसे इनका नाम गोवर्धन है। गिरी में राजा तो जैसे भगवान है, इनका नाम गोवर्धन है। वो मतलब होता है इंद्रिया। अब वर्धन मतलब होता है इंद्रियों को जो बढ़ाते हैं, इंद्रियों को जो सेवा करते हैं। इसलिए गिरिराज गोवर्धन कृष्ण की बहु रूप में सेवा करते हैं। इसलिए गिरिराज और गोवर्धन कृष्ण जो आते हैं उनके लिए आसन पाद आसमान और पंचामृत के द्वारा गिरिराज गोवर्धन यहाँ पर पंचामृत के द्वारा कृष्ण सेवा करते हैं सुंदर रूप में। पंचामृत से दूध दही फल इसको द्वारा गिरिराज गोवर्धन गन्ना उपलब्ध है, यहाँ पर मधु उपलब्ध है, गैया घास का अगर दूध देते हैं उसमें दूध नहीं बनती है और पानी का झरना भी है ही। और भगवान जब गिरिराज गोवर्धन में आते हैं उनका चरण स्पर्श पा करके मानो गिरिराज जी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और रोंगटे में झरना है कभी झरना में नहीं, कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके प्रेम में ऐसे उतावला हो जाते हैं जिनको आंखों से आंसू की झरी बह रही है और उनका चरण स्पर्श गैया की सेवा। इसलिए संपूर्ण दो मतलब होता है, संपूर्ण ब्रजवासी गैया को सब वर्धन मतलब गिरिराज गोवर्धन के सभी ब्रजवासी कृष्ण एवं काशना ये दोनों की उन्होंने सेवा पूर्ण की है। इसलिए हर दृष्टिकोण से श्री गिरिराज गोवर्धन सर्वोत्तम है। इसलिए गिरिराज की महिमा के द्वारा ही कृपा के द्वारा ही हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हम लोग श्री गुरु जी पाद में श्री गिरिराज गोवर्धन में आए। गुरु जी हम लोगों पर कृपा करें, हम साधु में हमारा कामना होना चाहिए। गुरु जी कृपा करें जैसे श्री गिरिराज गोवर्धन से उनके बल भगवत प्रेम और उनका चरण की सेवा ही हम प्राप्त करके राधा कृष्ण की सेवा में हम निवेदित हो सकते।
रसानंद ने बताया ये हरिदास भी है हरिदासी भी है और बताया कि राधा के मन से
भगवान भाई नहीं ये भगवान भी है।
तो बताइए इतने लीलाएं हैं मनुष्य समय लीला नहीं हो सकती है, लीलाएं हैं मनुष्य समय नहीं हो सकती है, इसे लीला हरिदासी है। तो ये हो जो वृंदावन में रास बचाया कृष्ण ने जो सारी जो रास लीला हुई थी उनको वृंदावन और वृंदावन ही कहा जाएगा क्या? और दूसरी बात है श्री राज है तो उनको श्री रानी कहा जाएगा? तीसरी बात है जो ओडी से जब जाते हैं तो जमीन क्यों चलाते हैं?
इसकी कवि जयदेव जी ने राधा माधव जयंती कर दिया। बोले राधा जी का वर्णन क्यों कर दिया पहले मंगलाचरण में? बोले कि राधा जी के बिना सिंगारस होता ही नहीं। तो इसलिए पहले राधा जी चरण में बोल रहा है। तो ऐसे जहां नहीं आ रहा है ये तो सभी सिंगारस के बल
गिरिराजी हो तो वृंदावन को क्या वृंदावन ही कहा
गया? क्या राधा जी के मन से निकले हैं?
ये तो कहा गया मनसा प्रकृति जातो गिरि गोवर्धन महान। प्रकृति के मन से जैसे ललिता दिशा का रविंद्र प्रगति कार्यक्रम है वो लोग नाम भी ऐसे है ये तो प्रकृति सोचती है। तो ये बताया व्यासदेव जी ने भविष्य पुराण में अनुभव हमारे भक्ति में सबू जिनको गोदाधर का अवतार है और सप्तमी अष्टमी वो कह रहे हैं कि गोदाधर की प्रकाश
सबको सामंजस्य करके सबको ही बातें मानी जाए। राधा जी के मन से प्रकट हुए सभी की है, उनके दास भी है, भगवान के स्वरूप भी है, वैभव प्रकाश भी है, सब प्रकाश से
ही है।
और
और उसके बाद में हरिदास पर उसके बाद हरिदास बैठ गए जैसे उद्धव जी को हरिदास हरिदास पर बताए उद्धव के बाद में नंबर आपकी गोपियों की भक्तों ने जो पांच स्तर का भजन बताए इसलिए लास्ट में केवल नंबर आपके गोपियों की शुरुआत फिर उसको तो बड़े भक्त नहीं होते हैं इसलिए उद्धव को प्रेमाशुर भक्त उसका जो केवल
they go as many